سورت الفاتحہ کی ان پڑھی گئی تین آیات کے ذیل میں تذکیری پہلو کی حیثیت سے کچھ بات آپ کو سنانے سے پہلے یہ عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مرتبہ کے اعتکاف میں جو نئے ساتھی ہیں بالخصوص جو نئے نوجوان ہیں وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ دینی باتوں کے مذاکرے کے وقت میں سب سے آگے بیٹھنے کا اہتمام کریں زیادہ نئے جو ساتھی ہیں. دوسری بات آپ کے خدمت میں یاد کرنی ہے کہ آپ لوگ سوچتے ہوں گے صاحب رات میں ساڑھے گیارہ بجے تک اس کی بھیڑ رہی ہے, 2 بجے سے اٹھانا شروع کر دیے اور پھر فجر تک بول رہے ہیں, اور اس کے بعد تو کم از کم چھوڑ دینا چاہیے تھا, یہ لیٹ جانا آرام کر لیا تھوڑی دیر. اس بارے میں آج کرنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی کچھ اس انداز سے گزاری ہے کہ جب آرام کا تقاضا ہوا آرام کر لیا, کھانے کا تقاضا ہوا کھا لیا, جب کہیں جانے کا تقاضا ہوا چلے گئے, جب کسی کام کے کرنے میں سستی پہلی ہو کر بعد میں کر لینے کا تائیا پیدا ہوا تو بعد میں کر لیا, طبیعت پر اپنے بوجھ نہیں ڈالا, مجاہدے والا طریقہ ہم نے نہیں اختیار کیا, نفس کی مخالفت جی کی چاہت کے خلاف میں اقدام کر دیا تھا, ہم لوگوں نے اہتمام نہیں کیا, اس کے نتیجے میں اپنی اسلام تربیت کے لیے نفس کی مخالفت کرو, مجاہدہ کرو. یہ جو بات بول رہے ہیں یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی, تو اس کی بنا پر اب سب کو سننے کا تقاضا ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ سے زیادہ تو مجھے نہیں, دو دن تین دن سے مسلسل جاگ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, ایسی صورت میں تقاضا تو آپ سے زیادہ مجھے ہوگا اور ہے بھی, اس کے ساتھ ساتھ دوائیں بھی ایسی چل رہی ہیں کہ کسی اور لوگوں کو پلا دی جائیں گے, 3 دن تک تو نہیں ہو سکتی ایسی دوائیں کھا رہے, اس کے باوجود یہ جو معمول ہے اس بات کو بتلانے کے لیے ہے کہ اگر ہم نے تھوڑی ہمت کی, تھوڑا سا حوصلے سے کام لیا, تو اپنے آپ کے تقاضے کو دبا کر ہم اس کے خلاف میں کسی کام کو کر سکتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے تربیتی مراکز میں مرکز نظام الدین میں آپ دیکھیں گے کہ صاحب رات کے 2 بجے جماعتیں پہنچے, 3 بجے پہنچے, 1 بجے پہنچے, تھک گیا ہے کچھ کریں, فجر کے بعد کا تفصیلی جو خطاب ہوتا ہے اس میں سب کو شرکت کرنا ضروری رہتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی کم از کم نئے آنے والے لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے, بات یہ ہے کہ دراصل وہ ایک اصلاحی اور تربیتی نظام ہے. اسی طریقے سے یہاں فجر کے بعد تھوڑی دیر آپ کو روزانہ اپنے نیند کے تقاضے کو دفع کرتے ہوئے تھوڑا سا اپنی طبیعت پر بوجھ ڈال کر سننے کا اہتمام کرنا چاہیے, اس کو اپنی تربیت کا حصہ سمجھیں. اس سلسلے میں ایک نہایت زرین اصول ہم آپ کو بتلا رہے ہیں, آپ اسے یاد رکھیں, وہ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصول ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو حالات ہوتے ہیں نا یہ طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں لیکن ہماری تربیت کے خلاف نہیں ہوتے, ہماری تربیت اس میں, اس لیے تھوڑی دیر آپ کو اپنی طبیعت پر بوجھ ڈال کر دین کی بات کو سننے کا اہتمام کرنا چاہیے. ویسے چونکہ یہ بات ہم کو اچھی طریقے سے معلوم ہے اور ہمارے بڑوں سے ہم نے سنی ہے نصیحت کے طور پر کہ کم از کم 6 گھنٹے سونے کا اہتمام کرنا چاہیے, تو رات میں آپ کو تقریباً 11 بجے سے لے کر 2 بجے تک 2-3 گھنٹے سونے کا, اور اس وقت میں 6 بجے سے لے کر 10 بجے تک कितने हो गए? सात आठ नौ दस समझे, रात में सवा ग्यारह से समझ लीजिए, सवा बारह सवा एक दो पौने तीन घंटे चार घंटे के, तो पौन घंटा तो मजीद एक्स्ट्रा आराम करने को दिया जा रहा। उसके बावजूद अगर हम ये समझेंगे नहीं मुझे तो उतनी सोना है जितना कि मेरा जी चाहता हूँ, जिसे आजकल बाद लोगों का रोजा कैसा चल रहा है मालूम है, बाद लोगों का रोजा ऐसा चल रहा है कि शहरी खा के सोते हैं इफ्तार को उठ जाते हैं। ऐसा जी गरीब किस्म का रोजा चल रहा साल तमाम वर्ग लोग एक बार पड़ने वाला नहीं होता। तो जरूरत के बदल इस बात का एहतमाम किया जाता है यहाँ कि आपको इतना आराम की वाकई जरूरत है उतना मौका दे दिया जाए। अलबत्ता ये जो छह साढ़े छह घंटों का वक्त रोजाना आपको मिलेगा उसमें आप कोशिश कीजिए इस बात की कि ताप रात में ये वक्त कम हो जाए आराम, जुफ्त रात में तो ये पूरा वक्त इस्तेमाल करो, लेकिन ताप जो रात होती है जैसे अभी शब्द गुजरी मुझे देखकर खुशी हुई बात नौजवान साथियों को, दो बजे ये डेढ़ बजे और दो बजे हमने देखा कि जरा बच्चे कुरान शरीफ ने सामने एक लाइन रखे तिलावत करने में मशगूल, जरा इस बात का भी खास ख्याल रखना कि तिलावत में जो लोग मशगूल हो रोशनी के वास्ते भी किसी के बाजू जाके बैठ के पढ़ रहे हैं ठीक है, वरना बिला जरूरत ही दोनों एक दूसरे के बाजू जाके बैठ के पढ़ रहे हैं जैसे नौजवान बच्चे करते हैं, तो ऐसी सूरत में पाव सफा पढ़ते हैं पंद्रह दस मिनट बातचीत कर लेते हैं, ऐसा ना करें। ये दूसरी चीज है आपको जिसे मालूम रखने का एहतमाम करना चाहिए। और देखिए आपको इनफरादी मामूलात के वास्ते भी अच्छा खासा वक्त मिलता है, छह घंटे आपके सोने के गए पांच छह घंटे आपको इनफरादी मामूलात के भी मिल जाते हैं, बाकी का वक्त नमाजों के लिए इज्तमाही अमल के लिए। ऐसी सूरत में बिलखसूस रमजान मुबारक के अखीर अशरे में आपको ज्यादा से ज्यादा मशगूल रखने का अपने आप को एहतमाम करना चाहिए। और ये माहौल ही का असर है, वरना तो घरों में आप देखें कि यहाँ बाद लोगों ने आवाज लगाई है भाइयों शहरी के वक्त हो गया है उठ जाइए उठ जाइए, तो माशाल्लाह उठ गए थोड़ी देर में, लेकिन घरों का हाल कैसा रहता है? माँ बाप तीन बजे से जो आवाज लगाना शुरू करते हैं तो चार बजे तक करवटे ही लेते रहता है, कभी इधर कभी उधर, माहौल नहीं होता तो आदमी को अमल करना दुश्वार होता है। इसकी बिना पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह तबारक ताला ने आपको अपने घर में बुलाया, अपने घर में ठहरने की सआदत दी। किसको बुलाते हैं? जिसको चाहते हैं उसी को तो बुलाते हैं, जिससे चाहत होती है जिससे ताल्लुक होता है उसी को कहते हैं तुम हमारे घर आ जाओ, कोई आ गया तो कहते हैं तुम यहीं रह जाओ, अभी क्या को जाते हो जरा और ठहर जाओ दो चार दिन कम से कम ठहरो फिर जाओ, बोलते कि नहीं बोलते? मौला ताला ने अपने घर को बुलाया अपने दर पे बिठाया बैठने की सआदत दे दी, पता नहीं किसकी दुआ काम आ गई या हमारा कौन सा किस वक्त का नहीं की कि कोई अमल था अल्लाह को पसंद आ गया उसके नतीजे में यह मौका मिल गया, वरना तो रमजान जैसे जमाने में रमजान के अखीर ऐसे जैसी कीमती रातों में आप देखेंगे कि लाखों लोग बाजारों में फिरते रहे। अल्लाह का करम है कि उन्होंने अपने घर पे बुलाया, आप इसकी कदर कीजिए, वक्त का बिल्कुल सही इस्तेमाल कीजिए और तनाफुस हो कुरान की तिलावत में दुरूद शरीफ की कसरत में इस्तिगफार में और सुबह कलिमे के पढ़ने में और दुआ का खास तौर से एहतमाम करना। आपके कार्ड में लिखा हुआ है इनफरादी दुआ पांच से दस मिनट तक करने का एहतमाम करें, अपनी जुबान में करना, अल्लाह ताला को तो सारी जुबानें आती हैं, है ना? अरबी जितनी दुआएं आपको आती है अरबी में कीजिए, उसके बाद में अपनी जुबान में तेलुगु वाला तेलुगु में अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में उर्दू वाला उर्दू में अरबी वाला अरबी में करे। एक और मामूल लिखा हुआ है वो है और अजैया से रोजाना दुआओं की एक मंजिल के पढ़ने, ये गाय को कहते हैं पांच से दस मिनट की दुआ अलग करा दें और वो दस मिनट की दुआ अलग, वो काहे को करा रहे हैं। बात असल में ये है कि जैसे हमको ये मालूम नहीं था कि अल्लाह से क्या मांगना क्या नहीं मांगना, अल्लाह ने बताया कि ये मांगो, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, है ना। उन्होंने ही बताया क्या मांगना चाहिए। कुरान अल्लाह ने नाजिल किया, सूरह फातिहा अल्लाह ने नाजिल फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से माल किया मिन जिन तक के जैसे कलिमात अल्लाह के हैं, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम भी अल्लाह ने नाजिल फरमाया। उसके माना क्या है कि हमको सीधा रास्ता दिखला। ये कह के लिए नाजिल फरमाया कि मेरे बंदे मुझसे ये मांगे यो मांगे। इसी तरीके से दुआएं जो कुरान में आई हैं, दुआएं जो हदीसों में आई हैं, वो इस दर्जे शानदार और ऐसी शानदार और दुनियावी और उखरवी नुक्ते नजर से इस दर्जे मुफीद तर दुआएं हैं कि हमें क्या अकलमंद से अकलमंद उससे बेहतर दुआओं का तसव्वुर नहीं कर सकता। क्योंकि हमको माना नहीं मालूम है, उसकी बिना पर हमको उसकी अहमियत समझ में नहीं आती। किसी वक्त में उसकी दुआओं का कुछ हिस्सा क्या मफहूम है उसका वो आपको बताएंगे। तो मामूलात में मुनाजात मकबूल या रोजाना दुआओं की एक मंजिल जो औरत और दिया में यहाँ एक मोटी किताब रखी हुई रहती है, कई एक नहीं है। और साथ ही बिलखसूस ये रात में जो 2 बजे उठ के जी तहज्जुद की नमाज जिसे कहते हैं, क़ियाम लैल जिसे कहते हैं, कम से कम 4 बेहतर है 8 पढ़ लें जी, उसके बाद में वो मुनाजात मकबूल से या औरत और दिया से दुआओं का एहतमाम करना ज्यादा अच्छा है। तहज्जुद के वक्त में परवरदिगार आलम दुआओं को कबूल करते हैं और उनकी तरफ से यह ऐलान होता रहता है कोई है मुझसे मांगने वाला कि मांगे कि हम उसकी मांग को पूरी कर दें। हमारे बड़े लोग क्या कहते थे, दीन के कामों में, अच्छाई के कामों में, नेकी के कामों में इतना मशगूल हो जाओ, इतना मशगूल हो जाओ, इतना अपने आप को थकाओ कि जब सोने का वक्त आए तो आप ये बोलना आपके लिए मुश्किल हो उठने के बाद, मुझे ये नहीं याद है कि मैं सोया पहले और मेरा सर लगा तकिए को बाद में, या मेरा सर तकिए को पहले लगा बाद में नींद आई, ये बोलना मुश्किल हो जाए। इतना थकना चाहिए दीन के लिए, थकना ये तो है ही नहीं हमारे पास। और आपको मालूम है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में इबादत में इस दर्जे अपने आप को मशगूल किया करते थे कि लंबे लंबे क़ियाम की वजह से आपके मुबारक कदमों पर वर्म आ जाता था, कितना मशगूल रहते। कभी हम लोगों ने ऐसा अपने आप को मशगूल करके देखा, जरा किसी वक्त में लंबा क़ियाम करके देखो इतना कि पांव पे वर्म आ जाए तो समझ में आएगा कि कितना लंबा क़ियाम होता था। बहरहाल एहतिकाफ में आपको कैसे रहना है, थोड़ा थोड़ा रात में सुनाया गया है, थोड़ा इस वक्त में सुनाया गया है, उसको जहन में रखें। फजर के बाद के वक्त खुसूसियत के साथ में कुरान मजीद के जरिए से कुछ जरूरी और मुफीद बातें आपके गोश गुजार करने के लिए निज़ामुल अमल में बनाया गया है। निज़ामुल अमल तो माशाल्लाह हमारे हम लोगों ने मिलके, साथियों ने मिलके बनाया, और इंतजाम भी हमारे असलम भाई और उनके जी रुफ़खाए कार ने इस दर्जे अच्छे अंदाज में कर दिया कि अजर सवाब के पाने के एतबार से मुस्तकिल जिसे कहते हैं थोक तिजारत थी, वो उन लोगों ने कर ली, हम लोगों को एक सुई से करने का मौका मिल रहा है। वरना तो इतनी बड़ी तादाद वो वक्त पे खाना मिल जाना वो भी सलीके का एक मामूली बात नहीं है। घर में 3-4 आदमियों को नहीं बोल, अल्लाह का करम है, इनायत है, मौला ताला की मेहरबानी, उन्होंने हमारे साथ में इतनी सहूलतों वाला मामला किया है, तो हम ऐसा रुझू रहे अल्लाह पाक की तरफ कि मेरा दिल गया अल्लाह जल्ले शानों से वाबस्ता हो जाए और दूसरों से मेरा दिल ये कटने और हटने लगे। फिर समर्पित तवक्कुल इलैहि तब्दीला, अल्लाह की तरफ पूरी सुई के साथ सबसे अलग थलग होकर उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाओ, दिल की एक कैफियत होनी चाहिए। और भाई सबक से पहले एक बात और भी, और वो ये है कि एहतिकाफ हमारे करने का जो मकसद हो उस मकसद को सही करना ये गैर मामूली अमल। बाद लोग मुख्तलिफ मकासिद के लिए दीन के काम करते हैं, नेकी के काम करते हैं, आमाल को अख्तियार करते हैं। अल्लाह को राजी करना, अपनी आखिरत को बनाना, ये पेश नजर बुनियादी तौर पर नहीं होता, बल्कि कोई दूसरा मकासिद होता है। किसी ने बहुत कुछ इलाज कराया, कहीं फायदा नहीं हुआ, मैं चलो कम अज कम मशरे अखीरा में जाके एहतिकाफ कर लेंगे, दुआएं भी करेंगे, दुआओं की करवाएंगे भी, इस तरीके से इनफिरादी इस्तेमाई दुआएं होती रहेंगी तो हो सकता है कि मुझे छुटकारा मिल जाए। तो कोई खराब मंशा तो नहीं है, लेकिन बड़ा मंशा नहीं है। हमने जिस्मानी सेहत ही चाहिए, दुनिया ही का फायदा चाहा उसे। किसी ने कोई और मकसद बनाया, कारोबार की लाइन का, तजारत की लाइन का जी, किसी ने और अपने घर के जो मसाइल हैं उन मसाइल के हल का, ये मुख्तलिफ किस्म के मकासिद लोग बनाते हैं। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह के पास में एक सहाबा ने कहा, हजरत ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, पर सारा काम नहीं हुआ। तो हजरत ने फरमाया कि वो काम के वास्ते तुम पढ़े थे ना, अल्लाह के वास्ते पढ़े। अरे अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की रजा और खुशनुदी से बड़ी कोई चीज नहीं, और आखिरत के सही और दुरुस्त होने से आला कोई चीज नहीं, उसको पेश नजर रखकर विश्वास। तो दुआओं में ये भी दुआ मांग लो कि अल्लाह मैं आया होगा किसी दुनिया के गरज के साथ में, मगर मुझे ऐसा इखलास दे, मेरी नीयत में ऐसी पाकीजगी और सेहत दे, और मेरे दिल को ऐसा अच्छा बना दे, मेरा ये अमल खाली सिर्फ और सिर्फ आपको राजी करने के लिए हो जाए। ये भी एतमाद करना, ए दिलों के फेरने वाले मौला, मुझे दुनिया से दुनिया की तरफ मेरे दिल की जो रुख है उससे फेर कर अपनी जात की तरफ कर। चीजों के जरिए से राहत और सुकून पाने का मेरा जो मिजाज है, अल्लाह इससे हटा कर आपकी याद, आपसे ताल्लुक, आपसे मोहब्बत के जरिए से मेरे दिल को राहत और सुकून हासिल होने लगे, मेरे दिल की कैफियत ये बना। इसको तुम्हें दुआओं गए तो हम तो कम करते ना, वो तो बनो दुनिया भी कोई मकसद है, बस उसके लिए आमतौर पर करते हैं। बहुत सारे ऐसे मुखलिस साथी भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं, बल्कि सीधी सी बात है कि ये जितना कुछ निजाम चलता है वो सब के सब ऐसे ही मुखलिस बंदों की बरकत से चलता रहता है। बस अल्लाह राजी हो जाए और कुछ नहीं। अपने मौला ताला के राजी करने के लिए, उनकी खुशनुदी के लिए, कि वो मुझसे खुश हो जाए, मुझे ये अमल करना। ये दो तीन बातें इस मौके पर इंतकाब के सिलसिले में आप हजरात को सुनाई गई है, जहन में रखिए, और जो बातें सामने आती रहती हैं या देखने में मुशाहदे में आती हैं उसको सामने रखकर उस लाइन की इस्लाम तरबियत से मुतालिक बात हज़्ब मौका आपके सामने आती रहेगी। अब इस वक्त में आपको थोड़ी देर और मशगूल रहना है और पूरी तरीके से मुतवज्जे रहकर बात को सुनना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो देखे जैसा भी करते हैं मगर रहते नहीं इधर। कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दिखाई देते हैं कि बैठे हुए हैं हालांकि वो सोए हुए होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिखाई देते हैं कि हाजिर हैं हालांकि गायब होते हैं। और बात बात को तो ऐसी प्रैक्टिस होती है बैठने की, दूसरा सोच नहीं सकता कि ये सो रहा होगा, लेकिन वो अपनी इत्मीनान से अपना नींद का कोठा पूरा कर रहा होता है। थोड़ी सी तवज्जो के साथ में आप बात को सुनने गए तमाम कर। देखो कुरान मजीद के पढ़ने से पहले أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پڑھنے کا حکم ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اللہ کے کلام پڑھنے سے پہلے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ دو مقامات ہیں جہاں اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے، یا دو حالات ہیں جن حالات میں اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ ایک حال ہے قرآن مجید کی تلاوت، और दूसरा है दिल में बुरे ख्याल के आने। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया फैजा करातल कुराना فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, جب تم قرآن پاک کو پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگا کرو شیطان مردود سے. اور دوسری جگہ فرمایا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو شیطان تم کو بھرگلائے برائی پر ابھارے تو ایسی صورت میں تم کو اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے اور اللہ کی پناہ مانگ لینا چاہیے. تو دو مقامات ہو گئے. قرآن مجید پڑھنے کے وقت میں اعوذ باللہ تو پڑھتے ہیں, لیکن برے خیالات آنے کے وقت میں, برائی کی طرف نفس مائل ہونے کے وقت میں عام طور پر نہیں پڑھتے ہیں. آج سے آپ لوگ ارادہ کر لیجئے, ہم سب مل کے ارادہ کریں گے انشاءاللہ جب قرآن پاک پڑھیں گے تب بھی اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں پڑھیں گے, اور جب کبھی بھی برائی کا خیال آئے نفس برائی کی طرف مائل کرے تب بھی اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں گے. اللہ کا حکم ہے دونوں جگہ, اس کو بھی خاص طور سے خیال میں رکھنا ہے. مول صاحب بول رہے ہیں اس واسطے کرنا ہے ایسا, اللہ پاک کا حکم سنا رہے ہیں نا آپ, اب اللہ پاک کا حکم پورا کیجیے. کتنے ہی لوگ بولتے ہیں صاحب مول صاحب برے خیالات بہت ستا رہے ہیں, بس بسوں سے پریشان ہوں, ہمیشہ برائی کی طرح دل چاہتے رہتا, کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا, بول کے پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے وقت میں اور گلہ پڑھ لے, وہ ساتھی آ کے مول صاحب سے پوچھ رہا کیا کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے جب کبھی برائی ہو آئے. دوسری چیز, ہم لوگ کبھی کبھار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں برائی کے وقت میں, لیکن ویسا فائدہ نہیں ہوتا جیسا کہ ہونا چاہیے. بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ جب کسی سے پناہ مانگ رہے ہیں تو پناہ کیسی حالت میں مانگتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا کیا بولنا چاہ رہا ہوں. اچھا سننا ذرا, سونا مت, یہ سننے والے اگر سو گئے تو بولنے والا بھی سو جاتا. بھائی آپ کو کسی سے کچھ اندیشہ ہے, کوئی خطرہ ہے, کوئی آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے اور دوڑتا ہوا آ رہا ہے کہ آپ کے اوپر حملہ کر دے, تو ایسی صورت میں آپ کسی با اثر با روح جی خطاور اور عظیم شخصیت کے پاس میں پہنچ کر کیسی حالت میں کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے میری جان کا خطرہ ہے, میرے مال کا خطرہ ہے, اور میں ایسا پریشان ہوں, اور میرے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے, اور وہ بالکل قریب آیا ہی چاہتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں. عاجزی ہوتی ہے, انکساری ہوتی ہے, اور اضطراب اور بے قراری ہوتی ہے, اور اس سے گویا التجا کرتا ہے کہ ذرا مجھے اپنے پاس میں پناہ دے دیجیے. اس لیے کہ وہ ایسے شخص کے پاس میں جاتا ہے تو وہاں جانے کی صورت میں وہ پیچھے آنے والا پھر آنے کی ہمت نہیں کرتا, ایسی جگہ جاتا ہے نا, اپنے سے کمزور کے پاس تو نہیں جاتا, اپنے سے کمزور کے پاس نہیں جاتا, طاقتور کے پاس میں جاتا ہے. وہ کیا کہتا ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے آ جاؤ, اطمینان سے آ جاؤ, یہاں میرے گھر میں رہو اطمینان سے, تم کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, یہاں تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتے. کیسی حالت میں بڑا مانگتے ہیں آپ, لیکن اندازہ ہے نا. اب ہم شیطان کے وسوسے آنے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہے ہیں تو کون سی حالت میں پڑھ رہے ہیں وہ ذرا دیکھ. فائدہ نہیں ہونے کی کیا وجہ ہے, اللہ پاک تو یوں فرماتے ہیں کہ شیطان ورغلائے تو تم کو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو, اور برائی کا خیال آنے پر ہم اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہم کو فائدہ نہیں ہونا, تو اس کا سبب کیا ہے؟ پناہ مانگنے کا جو مفہوم ہے, جو تصور ہے, وہ تصور سے خالی ہو گیا ہمارا یہ عمل, بالکل ایسے ہی جیسے گناہوں سے توبہ سے متعلق توبہ کا جو تصور اور مفہوم ہے, وہ تصور اور مفہوم سے خالی ہونے کی حالت میں ہم سے توبہ ہو رہی ہے. इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि आजकल की हमारी तौबा ऐसी है कि ऐसी तौबा से तौबा, ऐसी तौबा से, समझाने के लिए बोल रहा हूं। आदमी तौबा करता है, तौबा की हकीकत से वाकिफ नहीं होता। इस्तिग़फ़ार करता है, इस्तिग़फ़ार की हकीकत से वाकिफ नहीं होता। इस्तेआज़ा करता है, अल्लाह की पनाह मांगता है, लेकिन उसका हकीकी जो मफ़हूम है उससे वाकिफ नहीं होता। अगर कोई ऐसा है कि मैं वाकिफ नहीं हूँ, मुझे वाकिफ होना चाहिए का एहसास है, बहुत बड़ी मदद है। और अगर कोई ऐसा है, मेरे को जरूरत क्या है इन चीजों की, बल्कि बोलने वाला है, तो ऐसी सूरत में पूरा गया समझो। आजकल बिल्कुल जरूरत नहीं महसूस कर रहे हैं, मुझे इल्म बढ़ाना है, फहम बढ़ाना है, अक्ल से काम लेना है, इल्मी इस्तिफादा करना है, मंशाए शरीयत को समझना है, रब्बानी अहकाम से हकीकी वाकफियत हासिल करनी है, अल्लाह रसूल की तालीमात में छुपी हुई गैर मामूली अजीम हकीकतों को समझने की कोशिश करना है, ये तसव्वुर ही खत्म हो गया। दो चार बातें क्या मालूम हो गई, बाद में ने यह समझा कि मेरी मालूमात की मेराज हो गई, कुछ सुनता नहीं, कुछ समझता नहीं, ना सीखना सिखाना चाहता है, ना ही सीखने वालों को कदर की निगाह से देखता है, बल्कि कई एक तो ऐसे हैं, अरे ये सब क्या लगे बोले जी, जो कर रहे थे ना बस वो कर लेते रहो, बस बोलते। उसके नतीजे में जिंदगी पूरी ऐसी ही चल रही। शायद लोगों ने यह समझा है कि इंसान को आखिरत में जो जजा मिलेगी वह अमाल की मकदार से की वजह से मिलेगी, हालांकि ऐसा नहीं है, अमाल के मेयार के हिसाब से जजा मिलेगी, अमल के मकदार से नहीं मिलेगी, अमल के मेयार से मिलेगी। जवाब लिखने वाला तालिब इल्म 5 सफहात का जवाब लिखा, लेकिन मुश्किल से तीसरे दर्जे से कामयाब हुआ। जवाब लिखने वाला दूसरा तालिब इल्म 1/2 सफहा लिखा, दर्जे अव्वल से पास हुआ। मकदार किसके पास ज्यादा है? 5 सफे वाले के पास। मेयार किसके पास ज्यादा है? 1/2 सफे वाले के पास। समझना बात को अच्छी तरह, अमल में मेयार लाने की कोशिश करें। मेयार तो इल्म के बगैर तो नहीं आ सकते, एक कदम नहीं उठा सकते सही इल्म के बगैर, सही कदम जिसे कहते। तो तअव्वुज़ के ज़ेर में बात अर्ज की जा रही है कि कुरान मजीद पढ़ने के वक्त में औज़ु बिल्लाह पढ़ने का हुक्म है कि आम तौर पर शैतान कुरान मजीद में बयान करदा अहकाम और बातों पर अमल करने से रोकने वाली चीज है। वो रोकने न पाए, अपने मंसूबे में कामयाब ना हो जाए, मैं कुरान पाक पढ़ने जा रहा हूं, ऐसी सूरत में मुझे इससे इस्तेफादा करना है भरपूर, कहीं ऐसा ना हो कि इससे फायदा उठाने से रोकने वाली जो मेरे मुखालिफ दुश्मन है वो मेरे ऊपर हमला आवर होकर अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए, इस वास्ते औज़ु बिल्लाह पढ़ने का हुक्म है। और पढ़ो भी तो कैसा पढ़ो, ऐसा जैसे कि अभी आपने सुना कि जब किसी से पनाह मांग रहे हो तो सोचते हुए कि किससे पनाह मांग रहा हूं, वो कैसी ताकत वाला, वो कैसे कुदरत वाला, वो कैसे कमालात वाला, वो कैसे गलबे वाला, और उसके मुकाबले पनाह मांगने वाला आजजी का, इंकिसारी का, बेकरारी का इजहार करता है। जैसे किसी बुजुर्ग से हमने सुना था, किसी साहब को ख्वाहिश हो गई इसमें आजम सीख, अल्लाह के नामों में से एक नाम इसमें आजम है, उस नाम से जो दुआ मांगी जाती है कबूल होती है, वो कौन सा है, वो वाज़ेह वाज़ेह नहीं है, इस वास्ते हम अपने साथियों से कहते हैं कि 99 नाम याद कर लो, कोई ना कोई एक तो होगा, है ना। बहुत सारे साथियों को याद भी है जो बाज़ौक हैं, दिया हुआ सबक याद करने का एहतमाम करते हैं, याद कर लेते हैं। तो एक साहब को ख्वाहिश हुई थी, एक बुजुर्ग के पास पहुंच गए कि साहब उसमें आजम मैं सीखना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पराए दिन पराए जगह तालाब के किनारे या समंदर के किनारे आ जाना, वहां सिखाएंगे तुम्हारे इसमें आजम। शौक से चलेंगे, कश्ती किनारे खड़ी रखी थी, कश्ती में बिठा गए, बैठ जा रहे इसमें, बैठ गए और लेके निकल गए अंदर पानी में। बीच समंदर में पहुंचने के बाद या बीच तालाब में पहुंचने के बाद उसको पकड़ के, मेरे ऐसे कमजोर नहीं थे, उसको पकड़ के उठा के पानी में फेंक दिए। फेंक दे के कश्ती वापस चप्पू से चला लेते हुए पलटे बगैर देखे बगैर चले जा रहे हैं, फिर किनारे को चले जा रहे हैं उसको बीच में पटक के। शुरू शुरू में तो पुकारा करते हजरत हजरत बोल के, हजरत सुनते ना सुनो समझते कुछ नहीं, ऐसा चले जा रहे हैं बस। अब उसे यकीन हो गया कि अब मुझे सिवाय अल्लाह के कोई नहीं बचा सकता। पहले हजरत हजरत बोल के वो साहब को पुकारा और साहब मुतवज्जे ही नहीं हुए, उसे यकीन हो गया कि अब तो ये मेरे पास आने वाले नहीं है। तो उसने कहा सारे सहारे खत्म हो गए, एक ही सहारा बाकी है, कहने लगा कि ए अल्लाह तू ही बचा ले। ये जो उसने बेकरारी की हालत में ए अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं, तू ही बचाने वाला है, तू मुझे बचा ले, जब उसकी बेकरारी का से ये जुमला निकला तो वो आवाज उनको भी पहुंच गई, कश्ती वालों को। वो जल्दी से वापस तेजी से चलाते हुए कश्ती बुला के उसको उठा ले, कश्ती में सवार कर लेके ऊपर आए और आके बोले ये जो तू ए अल्लाह बोलो ना जिस हालत में, वैसे देख इसमें आज पना मांगते हैं हम, मगर कैसी पना मांग रहे, सोच समझ के आदमी किसी काम को अंजाम दे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ते हैं कि हर काम को अल्लाह के नाम के साथ शुरू करना चाहिए। कौन से अल्लाह, जो रहमान भी है जो रहीम भी, जो मादी नेमतें भी देते हैं जो रूहानी भी, जिस्मानी नेमतें भी देते हैं रूहानी नेमतें भी देते हैं, दुनियावी जरूरतों के सामान भी करते हैं आखिरत की जरूरतों का सामान भी करते हैं, आंख भी देते हैं आंख में बिनाई भी देते हैं, आंख में बिनाई अल्लाह ने दी इसका एतिकाद भी देते हैं, ये ईमान भी देते हैं। अर्रहमान अर्रहीम में ये फर्क है, आंख देना आंख में बिनाई का देना ये शान रहमानियत है, और अल्लाह जल्ले शानहु अपने करम से किसी को ये एतिकाद और यकीन दे दे कि ये आंख अल्लाह ने दी है, ये शान रहीमियत। जिस्म दिया जिसमें जान दे दी, ये रहमानियत की तजल्ली है। अल्लाह ने जिस्म दिया अल्लाह ने जान दी, अल्लाह पर ईमान अल्लाह पर यकीन उसको एकता तस्लीम करने का एतिकाद ये मिल जाना, ये रहीमियत की तजल्ली। हर अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का हो, उसके बाद में है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम आलमों का रब है, तमाम आलमों की जरूरतों का पूरा करने वाला है। अब इसमें तीन चीजें हैं, एक है अल्लाह, दूसरे है रब और तीसरे है अल आलमीन। लिल्लाही रब्बिल आलमीन, उससे पहले अलहम्द, हम्द के माना तारीफ, अलहम्द के माना हर किस्म की तारीफ। इस वास्ते बुजुर्ग थे हमारे, अल का क्या मतलब है जानते हो, कहते हैं ये अल का मतलब है आल, बोलते रहते ना आल इंडिया जी, आल राउंड, हर किस्म की तमाम चीजों मफहूम जो उसमें पाया जाता है वो समझाने की आदत बोले उनको, हर बात को मिजाही अंदाज में समझाने की आदत थी तो ऐसा करते थे। हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए जो रब्बुल आलमीन, तो एक है अल्लाह, दूसरे है रब, तीसरे है अल आलमीन। अल्लाह अल्लाह का नाम है, رب اللہ کی صفت ہے, العالمین اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی صفات کا مظہر ہے, اللہ ذات ہے, رب صفت ہے, العالمین مظہر ہے اللہ کی صفات. اسی لیے کہتے ہیں دنیا کے بارے میں, دنیا کیا ہے؟ مظاہر قدرت, اللہ کی قدرت کے ظاہر ہونے کا محل, اللہ کی شان ربوبیت, کار فرما ہے تو کائنات کے ذرے ذرے پر اس کا اثر ہے, ہر چیز ان کے ظاہر کرنے سے ظاہر ہے, ہر چیز ان کے قائم رکھنے سے قائم ہے, اور ہر چیز کی جو ضرورت ہے ان کے ہی پورا کرنے سے وہ ضرورت پوری ہو رہی ہے. آسمانوں کے رب وہ ہیں, زمینوں کے رب وہ ہیں, عرش عظیم کے رب وہ ہیں, میرے اور آپ کے رب وہ ہیں, فرشتوں کے رب وہ ہیں, پیغمبران اعظم علیہ الصلاۃ والسلام کے رب وہ ہیں, صحابہ کرام اور اولیاء اعظم کے رب وہ ہیں, کائنات کے ہر ہر ذرے کے العالمین میں سب ہے نا, سب کی ضرورتوں کے پورا کرنے والے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین, ایک ہی جگہ ایک ہی آیت میں ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا ولہ الکبریاء فی السماوات والارض, بڑائی اسی کا کو زیب دیتی ہے, اسی کا حق ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں. اب اس بات کے سنانے کے بعد کون سنتا ہے, کون کیا کہتا ہے, کون کیا اعتقاد رکھتا ہے, اللہ پاک نے آگے فرمایا وہ سمیع العلیم, کیا بول رہا ہے اس کے بعد وہ سنتے بھی, اندر میں کیا اعتقاد رکھتا ہے وہ جانتے بھی. تو ایک ہے ذات حق, دوسرے صفات حق, اور تیسرے ہیں مظاہر حق, تینوں آگے نا اس میں للہ رب العالمین. ایک ہوتی ہے ذات, دوسرے ہوتے ہیں صفات, اور تیسرے ہوتے ہیں اور صفات کو ظاہر کرنے والی چیزیں, اس سے معرفت ربانی بھی حاصل ہوگی. ہمارے بڑوں کے بتائے ہوئے چھوٹے چھوٹے سبقوں میں بڑی تفصیلات ہوتی ہیں, بڑی گہرائی ہوتی ہے. جس میں صفات ہوتی ہیں اس کو ذات کہتے ہیں, صفات اچھی بھی ہوتی ہیں خراب بھی ہوتی ہیں, اچھی صفات جس میں ہیں وہ ذات کامل ذات, ناقص صفات جس میں ہیں وہ ذات ناقص ذات. جو لوگ پرانے ہیں پابندی سے جمعرات کی میرات میں آنے والے لوگ ہیں ان کو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتا, جو بالکل نئے ہیں ان لوگوں کو ذرا بار بار سننا پڑے گا تب کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت بات سمجھ میں آ سکتی. ایک شخص ہے جس نے بڑی شاندار کتاب لکھی, قریب بیٹھنے سے یہ فائدہ ہے جب نیند آتی ہے تو کوئی ہاتھ پھیرنے والا مل جاتا ہے, غنیمت ہاتھ پھیرنے والا وہ لوگ ہیں, ہاتھ رکھنے والا نہیں. وہ ہمارے حضرات مولوی ذرا ایک بار ہاتھ رکھ دو. نیند کو بھگانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا, ابھی 5-7 منٹ اور باقی, اس لیے کہ آپ کے سامنے گھڑی اتنی نہیں جتنی میرے سامنے. تھوڑا سا تربیت کا مرحلہ ہے نا, اپنے کو بات بھی سننی ہے سمجھنے بھی ہے, تھوڑا سا طبیعت پر باج ڈالنا بھی ہے, اور نفس کی تھوڑی سی مخالفت کرنی بھی ہے, और अल्लाह के लिए ऐसा कुछ झेलना है। बहरहाल मुअज्जज दोस्तों, कुछ होती हैं खूबियां, उनको सिफात कहते हैं, कुछ होती हैं खराबियां, उनको भी सिफात कहते हैं। अच्छाइयों को भी सिफात कहते हैं, बुराइयों को भी सिफात कहते हैं। इस वास्ते अब वो सिफात के आगे एक लफ्ज बढ़ाते हैं, सिफात फाजिला, सिफात नाकिसा, सिफात कामिला, सिफात नाकिसा, सिफात हमीदा, सिफात लजीला। इसी में पाई जाने वाली जो चीजें हैं वो सिफात कहलाती है। अगर समझ में बात आ रही है या आए इस किस्म के मुजाकिरे के बाद में, तो कितनी बड़ी चीज आपको मिलेगी उसका तसव्वुर, उसका अंदाजा आपको बाद में ही हो सकता है, वरना इस वक्त में सरसरी सरसरी इल्म, सरसरी मालूमात, मेयार से आरी और खाली। तो खूबियां और खराबियां ये सिफात कहलाती है। ये सिफात अगर अच्छी है तो जिसमें है वो जात है। उसको समझाने के लिए हम बोल रहे थे, किसी साहब ने बहुत शानदार किताब लिखी, तो जिन्होंने लिखी वो जात है। लेकिन सब तो नहीं लिख सकते, वही लिखेगा जो कलम का माहिर, वही लिखेगा जिसका इल्म गहरा। हाँ, अच्छी तरह याद रखना, तकरीर करना आसान है, किताब लिखना मुश्किल है। किताब नहीं लिखी जा सकती, एक अंदर तकरीर कर देंगे लेकिन चार सफे लिख दे, ये कोई आसान काम नहीं है। तो सर तेरी किताब किताब हो, ऐसा नहीं कि जो भी किताब आ रही है मुझे ये समझेंगे उसके पीछे वाकई इतनी मेहनत करनी पड़ी होगी, जिसे किताब कहते हैं, जिसमें हर बात मेयारी, जिसकी हर बात मुस्तनद हो, जिसके बारे में कोई पूछे कि ये आपने कहां से लिखा है तो वो उसके बारे में समझा सके कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो किताब किसी ने लिखी, तो जिसने लिखी वो जात, लेकिन महारत की वजह से लिखी, इल्म की वसात की वजह से लिखी, कलम का धनी होने की वजह से लिखी, तो ये जो उसके अंदर खूबी है ना, ये सिफत कहलाती। और वो जो किताब है ना, वो जात और सिफत की मजहर है। वो किताब देख के समझ में आता है कि आदमी का इल्म कितना वसी है, और उसके इल्म की वसात की वजह से समझ में आता है कि वो आदमी कितना कितना जनाब वजनदार है, कितनी बड़ी उसकी हैसियत है और कैसा जबरदस्त वो आलिम है, समझ में आता है। तो एक होती है जात और दूसरे है सिफत, और तीसरे है जात और सिफात को जाहिर करने वाली चीजें। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में अल्लाह जात है, रब सिफत है, और अल आलमीन अल्लाह की जात और सिफात को जाहिर करने वाली चीजें, मज़ाहिर कुदरत है। इसीलिए जब आदमी को इस लाइन का इल्म हासिल होता है या किसी बुजुर्ग से उसे तरबियत मिलती है, तो ऐसी सूरत में वो कायनात के जर्रे जर्रे को देखकर उसकी सिफत को भी याद करता है, उसकी जात तक भी पहुंचता है। इस तरीके से वो चीजें कायनात की आदमी को अल्लाह से गाफिल नहीं बनाती, बल्कि अल्लाह को याद दिलाने वाली बन जाती है। जिसको यूं कह लीजिए, हमारे अकाबिर की तालीम और तहकीक के नतीजे में कि वो यूं फरमाया करते थे कि ऐसे नजर वाले की हक में कायनात का जर्रा जर्रा तस्बीह का दाना बन जाता है। छोटे तस्बीहां तो बहुत देखे होंगे ना, इतनी बड़ी तस्बीह देखे कहां से। पहाड़ क्या है, तस्बीह का दाना है, उसको देखकर आदमी अल्लाह को याद कर रहा है। ये दाना उंगली से फिरता है, उंगली पर से गुजरता है तो आदमी अल्लाह को याद करता है। वो दाना ऐसा है कि उस नजर रखने वाले की जब नजर उसके ऊपर से गुजरती है तो अल्लाह को याद करता है। آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، درختوں کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، دریاؤں کو دیکھا، سمندروں کو دیکھا، درندوں کو دیکھا، چرندوں کو دیکھا، پرندوں کو دیکھا، انسانوں کو دیکھ لیا، حیوانوں کو دیکھ لیا، کائنات کا ہر ذرہ اللہ جل شانہ کی یاد دلاتا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں دیکھو رب کون ہے ضرورتوں کا پورا کرنے والا؟ للہ رب العالمین. ہر قسم کی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے. اتنی بڑی بات ہے، الحمدللہ رب العالمین سمجھنا بھی کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ جل شانہ کے پسندیدہ بندے شروع کرتے بھی ہیں تو الحمدللہ سے ہی شروع کرتے ہیں، ختم بھی کرتے ہیں تو الحمدللہ سے پہ ہی ختم کرتے ہیں. اسی واسطے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے ہر مقرر کو الحمدللہ بول کے شروع کرنا ہے نا، اور جب بات پوری کر لیتا تو کیا کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ مگر کتنے ہی مقرر ایسے بھی ہیں کہ جن کو شروع کہہ کو کرا الحمدللہ سے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، ختم کہہ کو کرا اس پر وہ بھی سمجھ میں. ہمارے بہت سارے بچے رہتے ہیں، ہم کے شعور کھولنے کے لیے عرض کر رہا ہوں اس چیز، ہم تو اللہ کا نام بھی اللہ کے بغیر نہیں لے سکتے. اس واسطے آغاز کیسے ہوگا؟ اللہ کی تعریف کس سے ہوگا؟ اور جو کچھ کہا گیا انہی کے کہلوانے سے کہا، تو ایسی صورت میں اختتام کہہ پر ہوگا اللہ ہی کی تعریف کے اوپر ہوگا. اور اس میں اتنا بڑا سبب ہے، بالخصوص ذرا ہمارے بچے مولوی برادری، تقریروں کے کرنے والے، مسجدوں میں خطبات کے دینے والے، جلسوں میں عظیم الشان خطابات کے کرنے والے، وہ سمجھیں اس بات کو کہ ان کا شروع ہو رہا ہے الحمدللہ سے، ختم ہو رہا ہے الحمدللہ پر. کم از کم اس کا اثر اتنا تو ہونا چاہیے کہ میری تقریر سننے کے بعد لوگ میری تعریف کرنا بول کے، یہ تو کم از کم بیماری نہیں رہنا ہے نا. تعریف کا مستحق کون ہے؟ خالی تقریر کا ہی مسئلہ نہیں، آپ نے کسی کو کھلایا جی تو بھی یہی بولنا چاہیے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت دی. تعریف کا مستحق میں نہیں ہوں. اور آج کل ہم لوگوں کا دعوت نہ کھلانا، کیا بول رہے لوگ یاد کرنا جی، کھلا کے کھو دیا سب کچھ، کھلایا بھی گوایا بھی. ارے بھائی الحمدللہ بولو، اپنی تعریف کے خواہش مند کیوں؟ نماز کے آغاز میں یہ سبب ہے اور آخر نماز کا جو قیمتی ترین حصہ جس میں بندہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب پاتا ہے، سبحان ربی الاعلی کہتا ہے. میں کہتا ہے کہ میرا پروردگار، میرا رب، میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا بڑا برتر و بالا ہے. تو یہ الحمدللہ رب العالمین کے سلسلے میں دیا گیا چھوٹا سا سبق ہے، آپ ذہن میں رکھیں. باقی جو باتیں سامنے آتی رہیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے گوش گزار کی جاتی رہیں گی. حق تعالیٰ توفیق میں ہمارا تعلق فرمائے. کہاں ہیں ہمارے عبدالرحیم صاحب؟ کیا ہو گیا مول صاحب؟ ہاں اس وقت میں چونکہ سورج نکل چکا ہے اس لیے آپ حضرات دو رکعت ادا کر فرما لیں اور پھر اس کے بعد میں آرام کریں. اور دیکھیں اس بات کو کہ 10 بجے تک کے لیے آپ کو آرام کا موقع دیا جا رہا ہے، ساتھ ہی اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ 10 بجے سے پہلے خود اٹھ جائیں اور 10 بجے آپ لوگ تیار رہیں. ساتھیوں کو اٹھانے کے سلسلے میں دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے، اس واسطے کہ یہاں کوئی چھوٹے عمر کے کم سمجھ قسم کے افراد تو ہیں نہیں. ماشاءاللہ سب کے سب باشعور ہیں، بڑی عمر والے ہیں، نوجوان ہیں، معمر ہیں سب. ایسی صورت میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر ہم اٹھیں، اس لیے کہ خدمت کرنے والے جو ہیں وہ بھی ہماری ہی طرح ہیں. تو ایسی صورت میں وہ لگے ہوئے ہیں اپنے کام میں، اللہ ان کی ان محنتوں کو قبول فرمائے، لیکن ہم لوگ کوشش کریں گے وقت پر آپ لوگ تیار ہو جائیں تاکہ یہاں کا آگے کا جو نظام العمل ہے اس میں آپ اپنے آپ کو جوڑے رکھ سکیں. اللہ جل شانہ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ، اے کریم آقا، اے مہربان مولا، اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے اس مسجد میں ٹھہرنے کو قبول فرما، اے اللہ یہاں کے نظام العمل میں جڑنے کو قبول فرما، اے اللہ اس کو ذریعہ بنا کر ہمارے دلوں کو اپنی ذات کی طرف پھیر دے، ہماری نیتوں میں پاکیزگی عطا فرما، اخلاص جیسی عظیم الشان دولت نصیب فرما، ہر ہر عمل کو آپ کی رضا کے لیے کرنے والا بنا دے، اے اللہ علم عطا فرما، فہم عطا فرما، شعور نصیب فرما، کیے جانے والے اعمال میں معیار نصیب فرما، اے الہ العالمین اعمال صالحہ میں لگنے کی توفیق عطا فرما، فضولیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے کریم آقا دارین کی سعادت میسر اور مقدر فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.